आन्या अन्वय के साथ पाकर सुकून की नींद में सो गई थी। इसके बाद अन्वय ने उसे अच्छे से कंबल उड़ाकर वहां से चला गया। दूसरी ओर अन्वय सारी रात आन्या की बातों के कारण बेचैनी से करवटें बदलता रहा, पर उसे नींद नहीं आई। अगली सुबह जब आन्या की आंख खुली तो खुद को उस बड़े से कमरे में अकेले देखकर वो थोड़ी दुखी हो गई। अन्वय को वहां नहीं देखकर उसकी कल रात को उसके साथ हुई बातें याद आ गईं। उसने खुद को हिम्मत देते हुए कहा, इट्स ओके आन्या, वो तो है ही खड़ूस, इतनी आसानी से अपने दिल की बात कैसे मान सकता है। पर उसकी आंखें चीख चीख कर कहती हैं कि उसे की तुझसे प्यार है और तुझे बस उस प्यार को उसकी आंखों से उसकी जुबान तक लाना है, और तू ये बिल्कुल कर पाएगी। उसने लबों पर मुस्कान सजाई और कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। अन्वय तो सारी रात सोया ही नहीं था। सुबह के 5 बज रहे थे पर अभी भी वहां सन्नाटा पसरा हुआ था। अन्वय जाकर खिड़की के पास खड़ा हो गया और बाहर देखने लगा। अब भी बाहर अंधेरा था पर आकाश में अब हल्की हल्की राली दिखाई देने लगी थी। सूर्य का धीमा प्रकाश अपनी रोशनी बिखेरने लगा था। अन्वय खामोशी से दूर दूर फैले जंगलों को देखने लगा। कुछ देर बाद नहाकर तैयार हो गया और जीवन के साथ महल के उस भाग में चला गया जहां शोध कार्य चल रहा था। पिछले कुछ वक्त में उसके कुटुंब के वैम्पायरों की शक्ति कुछ कम होने लगी थी। वहीं विक्रांत अपने समुदाय की शक्ति बढ़ाने के लिए काफी वक्त से काम कर रहा था। उसका मकसद था अन्वय के क्षेत्र पर अपना कब्जा करना। अन्वय भी उस पर हमले की तैयारी में लगा था। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि काउंसिल का क्या नियम है, उसे बस अपने पापा को विक्रांत और उसके बाप शाश्वत की कैद से आज़ाद करवाना था। आन्या तैयार होकर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। आज उसने पर्पल कलर का प्रिंसेस गाउन पहना हुआ था, बालों को फ्रेंच चोटी में बांधा हुआ था, आंखों में हमेशा वाली चमक, लबों पर मोहिनी मुस्कान और चेहरे पर ऐसी कशिश कि किसी को भी अपना दीवाना बना ले। कुछ नहीं किया था उसने, फिर भी दिलकश लग रही थी। उसने शीशे में खुद को देखते हुए कहा, इतनी तो खूबसूरत है तू, फिर उस मिस्टर अकड़ू को तुझसे प्यार कैसे नहीं हुआ? या फिर प्यार है पर वो जाहिर नहीं करता। खैर, उस अक्कड़चंद की अक्कड़ को तो मैं निकाल कर ही रहूंगी। वो खुद से ही बात करते हुए मुस्करा रही थी। अचानक ही उसके पेट से आवाजें आने लगीं। उसे अब ध्यान आया कि उसने तो कल सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। उसका मुंह एकदम छोटा हो गया। अभी अगर अन्वय के साथ जिस घर में रहती थी वहां होती तो जल्दी से जाकर कुछ खा लेती, पर अब इस महल में ऐसे कहीं जा भी नहीं सकती थी। ऊपर से यहां सब वैम्पायर थे, इसलिए थोड़ा डर भी था उसके दिल में, पर भूख भी जोरों की लगी थी। उसे याद आया कि जूली ने कल उसे कहा था कि वो उसके कमरे के बाहर ही रहेगी हमेशा, कुछ चाहिए हो तो उसे बता दे। उसकी आंखें चमक उठी और वो गाउन संभालते हुए गेट की तरफ दौड़ पड़ी। उस बड़े से दरवाजे को खोलने में भी आन्या को बहुत मेहनत लगी। वो बाहर निकली तो जूली उसके सामने सर झुकाए खड़ी हो गई। आन्या ने उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे मैं कोई महारानी थोड़े ना हूं जो तुम मुझे इतनी इज्जत दे रही हो, तुम्हारे बराबर ही होंगी या छोटी भी हो सकती हूं, मेरे साथ नॉर्मल रहा करो। अब उसने उसके आगे हाथ बढ़ाते हुए कहा, फ्रेंड्स? जूली ने सर उठाकर देखा। आन्या उसे लबों पर मुस्कान सजाए देख रही थी और उसके आगे अपना हाथ बढ़ाए हुए था। जूली हिचकिचा रही थी तो आन्या ने ही उससे हाथ मिलाते हुए कहा, मेरा नाम आन्या है और अब से तुम मेरी दोस्त हो। वैसे तुम्हारा नाम जूली है ना? जी, जूली ने सहजता से जवाब दिया। आन्या ने अब अपने पेट को छूते हुए कहा, जूली यार, मुझे ना बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? वेजिटेरियन? उसकी प्यारी सी शक्ल देखकर जूली के लबों पर भी मुस्कान ठहर गई। उसने आगे चलने का इशारा करते हुए कहा, जी, मल्लिका ने आपको ब्रेकफास्ट के लिए बुलाया है और आज आपके लिए वेज खाने का इंतजाम किया गया है। उन्होंने ये भी कहा है अगर आप वहाँ खाने में असहज महसूस करें तो आपका खाना आपके कक्ष में भिजवा दिया जाएगा। उसकी जरूरत नहीं, मैं उनके साथ नीचे जाकर ही खाऊंगी, आन्या ने तुरंत ही आगे बढ़ते हुए कहा। फिर मन ही मन बोली, आन्या, तुझे अब इन सब की आदत डालनी ही होगी, वरना वो अकड़ू फिर से कहेगा कि तू उसके साथ नहीं रह सकती। यस, तू ये कर सकती है, बस उनके साथ बैठकर खाना ही तो है। तू बस शांति से अपना खाना खाइयो, उनकी तरफ देखियो ही मत, ना ही नॉनवेज देखेगी ना ही तुझे उल्टी आएगी, आन्या ने खुद को अच्छे से समझाया। नीचे पहुंची तो अनामिका जी को देखकर मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग कहा और एक नज़र अन्वय को देखकर मुस्कुरा दी, जबकि अन्वय ने उसकी तरफ निगाहें भी नहीं उठाई। आन्या बेटा, अगर आप यहाँ खाने में सहज नहीं है तो अपने कक्ष में भी जाकर भोजन कर सकती है, अनामिका जी उसे लेकर थोड़ी परेशान थी। आन्या ने उनकी बात सुनी और मुस्कुराकर बोली, इट्स ओके माँ। उसके मुंह से माँ सुनकर अन्वय ने हैरानी से उसे देखा। वहीं आन्या ने अनामिका जी को देखते हुए आगे कहा, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, मैं आपके साथ ही नाश्ता करूंगी। उसकी बात सुनकर जहां अनामिका जी मुस्कुरा दी, वहीं अन्वय के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। अनामिका जी के साथ बैठी मोहिनी आन्या को बेहद गुस्से से घूर रही थी। वो अनामिका जी के खास साथी की पुत्री थी। जब सम्राट को बंदी बनाया गया था तभी उनके बचाने की कोशिश में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तब से अनामिका जी ने ही उसे पाला था और वो यहाँ सभी फीमेल वैम्पायरों से ज्यादा खूबसूरत थी और शुरू से अन्वय को पसंद करती थी। इसलिए अब आन्या, जो उससे भी ज्यादा खूबसूरत थी और अन्वय के करीब भी थी, उसे देखकर उसे जलन हो रही थी। अनामिका जी ने आन्या को बैठने को कहा तो आन्या कुर्सी पीछे करके उस पर बैठ गई। जूली उसके पीछे ही खड़ी थी। आन्या की निगाहें गलती से टेबल पर चली गई तो उसने फौरन निगाहें हटा ली
और अपनी प्लेट पर अपनी निगाहें टिकाकर बैठ गई। आंखों को तो रोक लिया पर नाक का क्या करे। नॉनवेज की खुशबू जो उसके लिए बदबू थी वो उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। जी मचलने लगा तो उसने अपनी सांसें रोक ली। जूली ने उसे खाना परोसा पर आनिया एक निवाला भी खाने की हिम्मत नहीं कर सकी। उसे उल्टी आने लगी थी तो उसने झट से पानी का ग्लास लेकर अपने लबों से लगा लिया। अन्वय दिखाई नहीं दे रहा था पर आनिया के हर पल को बहुत गहराई से देख रहा था। आनिया बेटा खाइए ना। आनिया को सिर्फ पानी पीते देखा नामिका जी ने उसे खाने को कहा। आनिया ने उन्हें देखा और हल्की मुस्कान के साथ हामन सर हिला दिया और हिम्मत करके जैसे ही उसने एक निवाला तोड़ा उसके कानों में अन्वय की रौबदार आवाज़ पड़ी। जूली आनिया को लेकर बाहर गार्डन में जाओ, मौसम अच्छा है, वहीं नाश्ता करवा देना। नहीं मैं यहीं खाऊंगी। आनिया ने तुरंत ही उसकी बात का विरोध किया जिससे अन्वय की सख्त निगाहें आनिया की तरफ घूम गई और उसने आनिया को घूरते हुए कहा, जितना कहा है उतना सुनो, मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है। उसकी बात सुनकर आनिया ने उसे घूरते हुए मुंह बनाकर कहा, खड़ूस कहीं का। आनिया ने अब जूली की तरफ निगाहें घुमाई तो उसने आनिया को देखकर बड़ी इज्जत से कहा, मिस आनिया। उसने इतना कहा ही था कि आनिया गुस्से में उठ खड़ी हुई और अन्वय को घूरते हुए दनादन बाहर चली गई। अन्वय ने जूली को इशारा किया तो वो खाने की ट्रे लेकर बाहर चली गई। अब अन्वय ने जाती हुई आनिया को देखते हुए कहा, बेवकूफ़ लड़की, एक तो उसकी केयर कर रहा हूँ और वो उल्टे मुझ पर खड़क कर चली गई। अनामिका जी अन्वय को देखकर मुस्कुरा रही थी, वहीं मोहिनी का हाल गुस्से से बेहाल था, वो गुस्से में वहां से उठकर चली गई। अन्वय ने एक नज़र उसे देखा फिर खाना खाते हुए बोला, अब आप मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हैं, खाना खाइए।
अनामिका जी उसे देखकर मुस्कुराई फिर खाना खाने लगी। अन्वय खाना खाकर वापस अपने काम में लग गया। उसे आगे के लिए प्लानिंग करनी थी पर उससे पहले अपने क्षेत्र की सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया था उसने, अब उसे लेकर ही उसकी मीटिंग चल रही थी। आनिया बाहर आई तो मौसम सच में बहुत प्यारा हो रखा था, उसका मूड अपने आप ही ठीक हो गया। वो जाकर घास पर आलती पालती मारकर बैठ गई। जूली वहां पहुंची तो उसे नीचे बैठे देख घबराकर बोली, मिस आनिया आप नीचे क्यों बैठ गई। आनिया ने आवाज़ सुनकर नज़रें उठाकर उसे देखा और मुस्कुराकर बोली, अरे यार तुम इतना घबरा क्यों रही हो, बैठो मेरे साथ, ज़मीन पर बैठने का अपना ही मज़ा है, चिंता मत करो तुम्हारे खड़ूस मास्टर जी कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। उसकी बात सुनकर जूली ने आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखा तो आनिया ने दोबारा मुस्कुराकर कहा, मैं अन्वय की बात कर रही हूँ, वैसे तुम लोग उसे क्या कहकर बुलाते हो, रहता तो हिटलर की तरह है। जूली अब भी उसे हैरानी से देख रही थी। आनिया ने उसके हाथ से ट्रे लेकर नीचे रखा फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाते हुए बोली, बैठो और अब बताओ तुम सब क्या कहकर बुलाते हो उसे। वो हमारे भावी सम्राट हैं तो हमें उन्हें मास्टर कहकर बुलाते हैं, जूली ने अब जाकर उसके सवाल का जवाब दिया तो आनिया मुस्कुरा दी और प्लेट से निवाला तोड़कर खाते हुए बोली, तुम खाओगी मेरे साथ या तुम सिर्फ नॉनवेज ही खाती हो। ऐसा नहीं है, वेज भी बनता है यहाँ पर, ज़्यादातर नॉनवेज बनता है, जूली ने आराम से जवाब दिया तो आनिया उसे देखकर बोली, तो तुम भी खाओ मेरे साथ। जूली ने मना करना चाहा पर आनिया नहीं मानी, आखिर में जूली को ही झुकना पड़ा। उसने आनिया के साथ नाश्ता करते हुए कहा, मास्टर अन्वय आपकी बहुत फिक्र करते हैं पता है, सबके साथ सख्त बर्ताव करते हैं पर आपको देखकर सॉफ्ट हो जाते हैं। परवाह तो सच में बहुत करता है पर गुस्सा भी उतना ही ज़्यादा करता है, पर जो भी मुझे बहुत पसंद है, आनिया ने अन्वय को याद करते हुए मुस्कुराकर कहा। जूली ने एक बार फिर सोचते हुए सवाल किया, आप जानती हैं वो आपके तरह इंसान नहीं फिर भी उन्हें पसंद करती हैं, आमतौर पर इंसान हम जैसे वैम्पायरों को देखकर डर जाते हैं और आप इतनी निश्चिंत मेरे साथ बैठी हैं, मास्टर को पसंद करती हैं, आपको डर नहीं लगता। लगता है डर पर जब वो आसपास हो तब नहीं लगता, विश्वास है मुझे उस पर कि वो मुझे कभी कुछ नहीं होने देगा, और अगर तुमसे मुझे खतरा होता तो वो कभी तुम्हें मेरे आसपास भी नहीं आने देता, इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ सुरक्षित हूँ, फिर तुम बहुत प्यारी हो, मुझे तुम पसंद आई। आप मास्टर को कब से और कैसे जानती हैं, जूली ने जिज्ञासावश उससे पूछ लिया तो आनिया उसे सारी बात बताने लगी। बातों बातों में उन्होंने नाश्ता किया फिर कुछ देर वहीं बैठे रहे, उसके बाद जूली उसे उसके कमरे में ले गई। आनिया अकेली बैठी बैठी बोर होने लगी तो वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। नीचे अन्वय जीवन और जैक के साथ खड़ा था और तीनों गंभीर लग रहे थे। अन्वय महल की सुरक्षा बढ़ाने के बारे में उनसे चर्चा कर रहा था और एकदम गंभीर चेहरे में बहुत ही कमाल लग रहा था। आनिया खिड़की से टिककर खड़ी हो गई और बड़े प्यार से अन्वय को देखने लगी।